आरवी अभी की तरफ देखते हुए, वो बस ऐसे ही वर्तिका का, वो ना इसे लगातार फीवर आ रहा था, तो कल मैंने इसके कुछ चेकअप करवा लिए थे ताकि पता चल जाए सब ठीक है, तसल्ली हो जाए कि नॉर्मल फीवर है और कोई परेशानी नहीं।
ये तो अच्छा किया आरवी तुमने।
हाँ आरवी, बिल्कुल सही किया। अभी आरवी को घूरते, देख लेना कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट में, यूं ही परेशान हो रही है। तेरा बस चले तो मुझे एक छींक आने पर आईसीयू में भर्ती करवा दो। शट अप। और मैं भी यही चाहती हूँ, कुछ ना आए, सब ठीक आए। फीवर है तो क्या हुआ, लगातार फीवर आ रहा हो तो इतना भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। आजकल फीवर के नाम पर अनेक बीमारियां हो गई हैं और हम बस बुखार है समझ लेते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इससे अच्छा पहले ही ध्यान दे ले ताकि पहले ही सोल्यूशन ढूंढकर बेटर इलाज हो जाए। जैसे ही आरवी ने ये बोला तो विनीत वर्तिका भी उसकी बात से सहमत हो गए। तभी आरवी हाथ में बंधी वॉच की तरफ देखते बोली, ओए मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कैसे?
अभी गाड़ी से।
आरवी कमर पर हाथ टिकाते, गाड़ी के टायर पंचर है, उस पड़ोसी के बच्चे ने फिर से सेम कांड कर दिया। उससे तो मैं आकर देख लूंगी, पर मुझे वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचना है, तेरी रिपोर्ट आज ही चाहिए मुझे। कैब वगैरह से गई तो लेट हो जाऊंगी, और मैंने अभी तक न तेरे लिए खाना बनाया ना तुझे दवा दी। अभी परेशान होते हुए तभी वर्तिका बोल पड़ी, मैं रुक जाऊं यहाँ? आरवी, जब तक तुम आती हो मैं, तब तक मैं यहाँ रहकर अभिनव को खाना भी खिला दूंगी और दवा भी दे दूंगी। अभी की तरफ देखते, जो मजे से अपना सूप पी रहा था। ये सुन आरवी खुश होते बोली, सच्ची अगर ऐसा है ना वर्तिका, ठीक है मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ, तुम इसका ख्याल रखो, दवा ये बता देगा और तुम खिलाओगी तो ठीक से खा भी लेगा, वरना मुझे तो दो दिन से नचाकर रखा है इसने। पर तुम्हारी मान लेगा सब, किचन उस तरफ है और वहाँ सब सामान है। ये सुन वर्तिका हाँ में सिर हिलाते मुस्कुरा दी। तभी विनीत चाय का कप छोड़ आरवी से बोला, एक प्रॉब्लम दी ने सॉल्व कर दी, दूसरी मैं कर देता हूँ आरवी, दी के रहते अभिनव भी अकेला नहीं रहेगा, गाड़ी है मेरे पास, चलो हम रिपोर्ट लेकर आते हैं। सच में? हाँ दो घंटे फ्री हूँ मैं, उसके बाद मेरी मीटिंग है, फिर मैं तुमको वापस घर छोड़ दी को ड्रॉप कर लूंगा, इतने टाइम में ये काम हो जाएगा ना? विनीत ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा। ओके मैं अभी आई, बोलकर आरवी भाग कर गई और अपना बैग ले आई और दोनों घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उनके जाते ही अभी बोला, ये आरवी ना खामखा परेशान होती रहती है, ठीक हूँ मैं भी, फिर भी ऐसे रिएक्ट करती है, उसे फिक्र है तुम्हारी अभिनव, वो गलत नहीं है, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। मेरी दोस्त मेरे बीमार पड़ने पर मेरी माँ बन जाती है, मेरे आगे पीछे ऐसे भागती है जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। परवाह तो इतनी कि मुझे लेबोरेटरी वालों को सौंप दिया कि करो इसके चेकअप, आ जाए फिर देखना तुम सब ठीक आएगा और उसकी चिंता मिट जाएगी। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे तुम? डांट के अलावा कुछ भी, अभी मासूमियत से बोला तो वर्तिका हंसती और सोफे से उठते बोली, तुम सूप दियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ यम्मी हेल्दी सा बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वर्तिका जाने लगी कि अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया, 5-10 मिनट रुक जाओ, अभी मैंने ये पिया है तो अभी कुछ नहीं खाना, बाद में बना देना, आरवी को आने में टाइम लगेगा। कह अभी ने वर्तिका ने उसे अपनी साइड में आकर बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए अभी के पास आकर बैठ गई। आरवी विनीत के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। आ गए? उसने हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए बोला। हाँ आ गए, वो भी वक्त पर, वैसे हम कब का आ जाते पर ये ट्रैफिक आधे से ज्यादा वक्त खा जाता है जिस वजह से देर हो जाती है, विनीत पार्किंग में गाड़ी लगाते बोला। विनीत जी अगर आपको लेट हो रहा है तो आप चले जाइए, हम कैब लेकर चले जाएंगे घर, आपकी मीटिंग भी है ना, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आप लेट हों और आपके बॉस आपकी क्लास लें। ये सुन विनीत हंस दिया, ऐसा कुछ नहीं है आरवी, अभी वक्त है मेरे पास, और रही बात मेरे बॉस की तो मैं उसे संभाल लूंगा, डोंट वरी। कैसे? उनसे पिटकर? आरवी भौहें उचकाते बोली। ये सुन विनीत ने उसे घूरा, तुम टेंशन मत लो मेरे बॉस की, हम साथ ही चलेंगे घर। आरवी गाड़ी से निकलते हुए, ओके और हम क्यों टेंशन लेंगे आपके बॉस की, आप जाने और आपके बॉस जाने, खैर हम यूं गए और यूं आए रिपोर्ट लेकर। मैं इंतजार कर रहा हूँ, विनीत गाड़ी में ही बैठे बोला और आरवी हॉस्पिटल की तरफ चली गई। विनीत उसे जाते देख मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अयांश तुम्हारी पसंद वाकई में सबकी पसंद बनने की काबिलियत रखती है, आरवी के साथ कौन रहना नहीं चाहेगा, इससे मिलकर इससे बातें कर ये तो किसी की भी पसंद बन सकती है। सोचते हुए थोड़ी देर बाद ही आरवी रिपोर्ट लेकर चली आई और गाड़ी में बैठते ही बोली, ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया आपको विनीत जी? नहीं, विनीत गाड़ी स्टार्ट करते बोला और दोनों वहां से घर के लिए निकल गए। विनीत ने आरवी के हाथ में फाइल देखकर पूछा, क्या आया रिपोर्ट में? आरवी मुस्कुराते हाथ में फाइल हिलाते हुए, सब नॉर्मल है, आपकी दी का कॉल आया था, उनको भी बता दिया कि सब ठीक है। अच्छा लगा देखकर विनीत जी कि हमारे दोस्त की जिंदगी में अब एक ऐसा शख्स है जो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत परवाह करता है, हमसे भी ज्यादा। ये सुन विनीत मुस्कुरा दिया और तभी 2 मिनट बाद हिम्मत कर आरवी की तरफ देखते बोला, एक बात बोलूं आरवी? आरवी बिना उसकी तरफ देखते हुए, क्या बात विनीत जी? मिस्टर मेहरा के बारे में, आते वक्त भी हमने आपको नोटिस किया कि आप उनको लेकर हमसे कुछ बात करना चाह रहे थे, राइट? हाँ आरवी, चाह रहा था मैं। वो तुम अयांश को माफ, विनीत बोल ही रहा था कि आरवी बोल पड़ी, विनीत जी हमें उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। विनीत जी हमें मानते हुए जो तुम्हारे साथ हुआ सही नहीं हुआ, पर यकीन मानो अयांश सच में इतना भी बुरा नहीं है, हमारी नजर में उनसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है विनीत जी। अच्छा, सक्षम वालिया भी नहीं? क्या वो अयांश से अच्छा है? एक बात बताओ आरवी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अयांश मेहरा और सक्षम वालिया में कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन सही है, कौन गलत, ज्यादा बुरा तुम किसे बताओगी? बोलो, जवाब दो आरवी। विनीत ने आरवी से सवाल किए तो आरवी उसकी तरफ देखते बोली, इस सवाल का जवाब आप हमसे बेहतर जानते हैं विनीत जी, क्योंकि आप उन दोनों को हमसे ज्यादा वक्त से जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको तो पता ही होगा ना। और आप दोनों की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं विनीत जी? सक्षम वालिया बुरा नहीं, घटिया इंसान है। और मिस्टर मेहरा, एक पल रुक कर, मिस्टर मेहरा ने मुझे सक्षम वालिया जैसे घटिया इंसान से बचाया है विनीत जी। चाहे फिर उन्होंने जो किया, जो तरीका अपनाया हो, हम पर इल्जाम लगाए हों, पर हम उस सबको साइड में रखकर फिलहाल एक ही बात याद रख रहे हैं कि उनकी वजह से हम सक्षम के गंदे इरादों से बच गए। इतना ही नहीं, मिस्टर मेहरा ने हमारी जान भी बचाई है हॉस्पिटल में, आप तो जानते ही है ना। इसका मतलब आरवी तुम भी मानती हो कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती है? अयांश बुरा है पर घटिया नहीं सक्षम वालिया जैसे? तो फिर आरवी तुम? तभी आरवी बोल पड़ी, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं विनीत जी, कोई मतलब नहीं, मुझे इस वक्त उनसे नाराजगी नफरत कुछ नहीं रखनी विनीत जी, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, बस उन्होंने जो किया फिर ना दोहराए तो बेहतर है, वरना वैसा कुछ उन्होंने फिर से हमारे साथ किया तो हम क्या करेंगे ये तो हम भी नहीं जानते, बाहर की तरफ देखते हुए। पर सच में आरवी वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो उसको लेकर, तुम्हारी इज्जत की परवाह करता है तुमको भी पता है, एक मौका तो मिलना चाहिए ना आरवी उसे, वो तुमसे। इतना कह विनीत चुप हो गया तो आरवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या विनीत जी हमेशा अधूरा कहकर छोड़ देते हैं, कभी तो पूरा वाक्य बोला कीजिए कि वो हमसे प्यार करते हैं, वो भी पहली मुलाकात से, जब एयरपोर्ट पर हम उनसे मिले थे तब आप भी साथ थे ना। ये सुनते ही विनीत ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। क्या तुम जानती हो? कैसे? अयांश ने तुमको कहा क्या? सवाल करते हुए।
शब्दों का इस्तेमाल जो तोल तोल कर करते हैं, कहीं उनका छोटा सा शब्दकोश खाली ना हो जाए, वो अपनी जुबान से अपने प्यार का इजहार हमसे करेंगे? कभी नहीं, कहे आरवी विनीत की तरफ देख हंसती, और विनीत ने अपना माथा पीट लिया। तभी विनीत कुछ बोलने को हुआ कि आरवी बोल पड़ी, हमें इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करनी विनीत जी, तो आप जो भी सोच रहे हैं रहने दीजिए प्लीज। पर आरवी, वो तुमसे प्यार करता है, विनीत इस बात पर जोर देते बोला, हम तो नहीं करते ना, इसके आगे हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, आपके जितने सवाल हैं उसका ये जवाब काफी है कि हम उनको लेकर कुछ नहीं सोचते, ना सोचना चाहते। गाड़ी स्टार्ट करिए और यहाँ से चलिए। विनीत ने गाड़ी स्टार्ट की और मन ही मन खुद से बोला, लो इसे तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, अयांश प्यार करता है ये जानते हुए भी, अब तो अयांश से ही कुछ करवाना पड़ेगा ताकि इनकी कहानी सही पटरी पर आए, वरना ये दोनों अपनी जिंदगी की गाड़ी ऐसे अलग अलग रास्तों पर लेकर चल पड़ेंगे जो रास्ते कभी एक दूसरे से ना मिल पाएंगे। सुना है ज्यादा वक्त बीतने पर करीबियों की बजाय दूरियां बढ़ जाती हैं, और फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दूरियां मिट नहीं पाती हैं, और फिर ये दूरियां अयांश को बहुत तकलीफ देगी, जो कभी अपना दर्द किसी से नहीं बांटता, पर तुम्हारे साथ वो अपना दर्द बांट सकता है, तुम ही उसकी हमदर्द बन सकती हो आरवी, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। अयांश के बारे में सोच आरवी की ओर देखते। तभी आरवी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की तरफ इशारा कर बोली, विनीत जी इसमें गाने वाने चलते हैं क्या? विनीत ने हूँ कहा और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया उसमें बहारों फूल बरसायों मेरा महबूब आया है सॉन्ग चल रहा होता है, जिसे सुन आरवी को अयांश के साथ का वो पल याद आ गया जब वो दूसरी मुलाकात में अयांश से बीच सड़क पर मिली थी। उस वक्त उसकी गाड़ी में यही गाना बज रहा था और अयांश उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसे ही एकटक देख रहा होता है। आरवी ने खुद उस गाने को बंद किया था और अयांश को उसकी ना सुनने पर खूब सारा सुनाया था, पर अयांश को खुद को देखते देख, कोई रिएक्ट ना करता देख, वो गुस्से में उसे खूब सुनाकर और उसकी गाड़ी की हवा निकालकर चली गई थी। ये सब याद आते ही आरवी ने फट से म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। ये देख विनीत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे पुराने गाने पसंद नहीं, कह आरवी बाहर की तरफ देखने लगी तो विनीत मन ही मन खुद से बोला, पुराने गाने नहीं पसंद या जिसे पुराने गाने पसंद है वो याद आ गया? आरवी की तरफ एक नज़र देखते हुए, क्रमशः